एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार।
एकत्र ज्ञान गोष्ठी के संघ में आपका स्वागत है। आज हम दर्शन शास्त्र की एक बहुत ही आप कह सकती हैं प्रभावशाली और दिलचस्प धारा पर बात करने वाले हैं, अस्तित्ववाद यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म।
जी नमस्कार।
और इस गहरे विषय को समझने में जैसा आपने कहा हमारी मदद करेंगे थॉमस आर फ्लिन के विचार, खास तौर पर उनकी किताबें जैसे एग्जिस्टेंशियलिज्म अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन और उनकी एक और किताब एग्जिस्टेंशियलिज्म से जो हमें समझ मिली है। तो हाँ, इन्हीं स्रोतों पर आज हम बात करेंगे।
हाँ, और देखिए अस्तित्ववाद सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, है ना? ये उन सवालों से जुड़ा है जो हम सब कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। अपनी आजादी का क्या मतलब है असल में, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं?
बिल्कुल।
और ये जो इतनी तेज रफ्तार दुनिया है कभी कभी थोड़ी उलझी हुई भी लगती है। इसमें हम अपने जीवन का अर्थ या कहें कि अपना मकसद, अपना लक्ष्य कैसे तय करें, मुझे लगता है ये सवाल आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं।
सही कहा आपने। जब बाहर से इतने दबाव होते हैं, इतनी उम्मीदें होती हैं, तो अपनी राह चुनना, अपना लक्ष्य तय करना ये बाकी एक बड़ी चुनौती बन जाता है। और यहीं पर हाँ, अस्तित्ववाद हमें जरा रुक कर सोचने को मजबूर करता है।
तो चलिए पहले उस शख्स के बारे में थोड़ा जानते हैं जिनके काम पर यह चर्चा आधारित है, थॉमस आर फ्लिन।
हाँ, थॉमस आर फ्लिन ये एमरी विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर एमेरिटस हैं और इनकी गहरी पकड़ है महाद्वीपीय दर्शन पर, खासकर जो फ्रांसीसी विचारक हैं जैसे ज्यां पॉल सार्त्र और मिशेल फूको, इन पर इनका काम काफी माना जाता है।
और यही चीज, मतलब उनकी ये विशेषज्ञता उन्हें अस्तित्ववाद पर बात करने के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति बनाती है। सार्त्र तो शायद अस्तित्ववाद का सबसे जाना माना चेहरा है।
हाँ बिल्कुल।
और उन पर फ्लिन का काम बहुत अहम है
जी।
और वो सिर्फ सार्त्र तक ही सीमित नहीं है, वो अस्तित्ववाद को एक बड़े दायरे में रखकर देखते हैं ना, मतलब आधुनिक यूरोपीय सोच के पूरे नक्शे पर।
जी, और वो एक बहुत अनुभवी शिक्षक भी रहे हैं, तो उनमें ये कमाल की बात है कि वो मुश्किल से मुश्किल दार्शनिक विचारों को भी आम लोगों के लिए दिलचस्प बना देते हैं, समझने लायक बना देते हैं। उनका नजरिया सिर्फ जानकारी देना भर नहीं है।
अच्छा।
वो दिखाते हैं कि ये अस्तित्ववादी विचारक जो हैं, ये एक तरह का परिवार हैं। इनमें आपस में क्या बहसें थीं, कहां ये सहमत थे, कहां अलग थे, वो सब बारीकियां सामने लाते हैं। मतलब ये कोई पत्थर की लकीर वाली विचारधारा नहीं, बल्कि एक चलती हुई बातचीत है।
तो फ्लिन की किताबों का फिर मुख्य मकसद क्या हुआ? पहली बात तो शायद यही कि वो जो आम गलत फहमियां हैं अस्तित्ववाद को लेकर, उन्हें दूर करना चाहते हैं।
हाँ बिल्कुल। जैसे कई लोग सोचते हैं कि ये बस निराशा की बात करता है या उदासी की या सिर्फ नास्तिकता की।
हाँ, यही सुना है ज्यादातर।
तो फ्लिन कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। वो इसे अलग अलग नजरियों वाले दर्शनों का एक कुंभा मानते हैं और इन सब का जो एक साझा केंद्र है वो है इंसानी आजादी, वो ठोस जिया हुआ अनुभव।
अच्छा।
वो सवाल उठाते हैं कि ये जो छवि है ना पेरिस के कैफे, काले टर्टल नेक वाले लोग, उससे हटकर अस्तित्ववाद असल में क्या कहता है? वो बुनियादी सवाल कि भाई ऐसी दुनिया में जहां कोई पहले से तय मकसद नहीं है, कोई ऊपर से आए नैतिक नियम नहीं है, वहां एक सच्चा, एक सार्थक जीवन कैसे जिए, अपनी भूमिका, अपना लक्ष्य कैसे तय करें?
और यहीं पर शायद उनकी सबसे जरूरी बात आती है ना।
हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं कि ये स्थिति, मतलब कोई पहले से लिखी स्क्रिप्ट ना होना, ये हमें लाचार नहीं बनाती, बल्कि यही चीज इंसानी जीवन को अनोखा बनाती है, कीमती बनाती है। ये हमें शून्य में नहीं फेंकती, बल्कि ये जबरदस्त जिम्मेदारी और ताकत का दर्शन है। ये कहता है कि अपनी कहानी के लेखक हम खुद हैं।
अच्छा, तो ये तो बहुत सशक्त करने वाली बात हुई।
जी, और उनकी किताबें हमें एक पूरे सफर पर ले जाती हैं, मतलब कियरकेगार्ड और नीत्शे जैसे शुरुआती विचारकों से लेकर फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद पेरिस का वो दौर आता है, सार्त्र, सिमोन द बुवार, अल्बेर कामू।
हाँ, वो सुनहरा दौर जिसे कहते हैं।
बिल्कुल। और फिर आज तक उसका क्या असर रहा है वहां तक।
और इस पूरी कहानी का जो केंद्रीय धागा है वो वही मशहूर विचार है, अस्तित्व सार से पहले आता है।
Existence precedes essence.
जी हाँ।
तो फ्लिन इसी एक विचार के अलग अलग पहलुओं और नतीजों को खोलते हैं, जैसे आजादी, जिम्मेदारी, फिर उससे जुड़ी जो बेचैनी है, एंग्स्ट, अकेलापन, फॉर लोनलेस, हताशा, डिस्पेयर, खुद को धोखा देना, बैड फेथ।
हाँ, प्रामाणिकता।
हाँ, प्रामाणिकता और दूसरों, दी अदर की हमारी जिंदगी में क्या भूमिका है।
चलिए अब इन्हीं में थोड़ा और गहरा उतरते हैं।
जरूर। तो शुरुआत करते हैं इसी केंद्रीय विचार से, अस्तित्व सार से पहले आता है। फ्लिन पहले ही साफ कर देते हैं कि भाई अस्तित्ववाद कोई एक बंदी बंधाई विचारधारा नहीं है, ये विचारों का एक समूह है जिनमें कुछ मिलती जुलती चिंताएं हैं।
और इस समूह का सबसे खास विचार यही है, पर इसका मतलब क्या है? ठीक ठीक
हाँ, देखिए फ्लिन इसे समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कोई कारीगर है, वो कागज काटने वाला चाकू बनाता है।
ठीक है,
तो उस चाकू का जो सार है, मतलब उसका डिजाइन क्या होगा, उसका मकसद क्या होगा, ये सब कारीगर के दिमाग में चाकू बनने से पहले मौजूद होता है।
हाँ जाहिर है।
अब पारंपरिक धार्मिक नजरिए से देखें तो इंसान भी ऐसे ही हैं। ईश्वर के मन में इंसानियत का एक खाका, एक सान पहले से था, फिर उसने हमें बनाया यानी अस्तित्व दिया।
हाँ पारंपरिक सोच तो यही कहती है।
लेकिन नास्तिक अस्तित्ववादी जैसे सार्त्र, वो इस क्रम को बिल्कुल उलट देते हैं। वो कहते हैं अगर कोई ईश्वर नहीं है तो कोई पहले से तय इंसानी स्वभाव या खाका भी नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है जो हमें निभानी है।
अच्छा,
हम पहले इस दुनिया में आते हैं जैसे फेंक दिए जाते हैं, हमारा अस्तित्व होता है, उसके बाद अपने हर चुनाव से, अपने हर काम से हम अपना सार बनाते हैं, अपनी पहचान, अपनी भूमिका हम खुद गढ़ते हैं।
तो मतलब हम जो बनते हैं वो हमारे कामों का नतीजा है, किसी पहले से बने डिजाइन का नहीं।
बिल्कुल, ये आत्मनिर्माण का दर्शन है, अपनी कहानी खुद लिखने का।
तो अगर हम अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं तो इसका एहसास कैसा होता है? फ्लिन कहते हैं कि ये सिर्फ दिमागी बात नहीं बल्कि एक गहरा भावनात्मक अनुभव है। सार्त्र ने इससे जुड़ी तीन खास भावनाओं का जिक्र किया था, संताप, परित्याग और निराशा। सुनने में शायद थोड़े भारी लगे हैं शब्द।
हाँ लगते तो हैं।
लेकिन ये हमारी आज़ादी के अनुभव का हिस्सा है, ऐसा वो कहते हैं।
जी,
पहली है संताप, एंग्विश, एंग्स्ट। ये वो आम घबराहट या चिंता नहीं है जो हमें रोजमर्रा में होती है। ये उस गहरी बेचैनी से पैदा होती है जब हमें ये पता चलता है कि हम अपने हर चुनाव के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं, और ये जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए नहीं।
अच्छा,
सार्थ कहते हैं जब हम कुछ चुनते हैं तो हम जैसे पूरी इंसानियत के लिए चुन रहे होते हैं, हम एक आदर्श बना रहे होते हैं कि इंसान को ऐसा होना चाहिए। इस भारी जिम्मेदारी का जो एहसास है, जो बोझ है, वही संताप है।
बाप रे, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुई।
हाँ।
फिर आता है परित्याग या अकेलापन, फोरलोननेस,
अबैंडनमेंट।
ये भावना इस नतीजे से आती है कि अगर ईश्वर नहीं है तो कोई बाहरी ताकत नहीं है जो हमें बताए कि क्या सही है क्या गलत, कोई बनी बनाई वैल्यूज नहीं है, कोई दिव्य नियम नहीं है जिनका हम सहारा ले सकें। हम इस दुनिया में अपने फैसले करने के लिए बिल्कुल अकेले छोड़ दिए गए हैं। यानी अपना रास्ता खुद ही बनाना है। बिल्कुल, अपने नैतिक दिशा निर्देश खुद गढ़ने होंगे। और तीसरी है निराशा, डिस्पेयर। अब यहां निराशा का मतलब वो नहीं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए, नाउमीद हो गए।
अच्छा, तो क्या मतलब है
इसका? मतलब है ये स्वीकार करना कि हमारी ताकत की सीमाएं हैं, हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें दुनिया से या दूसरों से किसी गारंटी या सफलता की उम्मीद किए बिना काम करना है, बस उस पर ध्यान देना है जो हमारे बस में है, हमारी अपनी इच्छा शक्ति, हमारे अपने चुनाव, हमारे कर्म।
मतलब नतीजों पर ध्यान देने के बजाय अपनी कोशिश पर ध्यान देना।
हाँ बिल्कुल, बाहरी नतीजों पर हमारा पूरा काबू नहीं है लेकिन अपने इरादों और कोशिशों पर तो है।
ये भावनाएं थोड़ी मुश्किल जरूर लगती हैं, लेकिन जैसा आपने कहा, फ्लिन के मुताबिक ये हमारी आज़ादी का हिस्सा है, इनसे भागना ही शायद आत्मवंचना है। अच्छा, अब कुछ और जरूरी औजारों पर बात करते हैं। आपने जिक्र किया था स्वतंत्रता, तथ्यात्मकता और अतिक्रमण, ये क्या है?
हाँ, ये बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट। देखिए, हमारी स्वतंत्रता तो परम है, हम हमेशा चुनने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन ये आज़ादी हवा में काम नहीं करती, ये काम करती है हमारी तथ्यात्मकता के दायरे में।
तथ्यात्मकता यानी?
तथ्यात्मकता का मतलब है हमारे होने के वो ठोस तथ्य जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जैसे हमारा जन्म कहाँ हुआ, हमारा अतीत क्या रहा है, हमारा शरीर कैसा है, हम किस समाज में हैं, ये सब हमारी तथ्यात्मकता है।
समझ गई, जो दिया हुआ है।
हाँ, जो दिया हुआ है, लेकिन हम सिर्फ इन तथ्यों के कैदी बनकर नहीं रह जाते, यहीं पर अतिक्रमण की भूमिका आती है। ये हमारी वो क्षमता है जिससे हम इन दिए गए तथ्यों से आगे देखते हैं, भविष्य में अपनी संभावनाओं को रचते हैं।
मतलब अपनी हकीकत से आगे बढ़कर कुछ नया करना।
बिल्कुल, अपने लक्ष्य चुनना, उनके लिए काम करना, हम लगातार अपनी मौजूदा स्थिति यानी तथ्यात्मकता और उसे पार करके एक नया भविष्य बनाने की अपनी क्षमता यानी अतिक्रमण के बीच एक तरह से झूलते रहते हैं, यही इंसान होने का तनाव है।
और इसी तनाव से जुड़ा है वो सबसे जरूरी नैतिक सवाल, है ना, प्रामाणिकता बनाम आत्मवंचना,
ऑथेंटिसिटी वर्सेस बैड फेथ।
हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से अस्तित्ववादी नैतिकता का दिल है।
तो आत्मवंचना या बैड फेथ क्या है?
इसका सीधा मतलब है खुद से झूठ बोलना, खुद को धोखा देना, ये मानने से ही इनकार कर देना कि हम आजाद हैं और जिम्मेदार हैं।
अच्छा, जैसे?
इसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे यह कहना कि मैं क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, या मैं तो बस ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता।
हाँ, ये तो बहुत कॉमन है।
बिल्कुल। या फिर किसी सामाजिक भूमिका में खुद को पूरी तरह डुबो देना, जैसे एक अच्छी बेटी या एक सफल कर्मचारी या आदर्श पत्नी, और इन भूमिकाओं में इतना खो जाना कि हम अपनी व्यक्तिगत आज़ादी और जिम्मेदारी को भूल ही जाएं।
हाँ, सार्त्र ने वो वेटर वाला उदाहरण दिया था ना। हाँ बिल्कुल, वो वेटर जो इतनी ज्यादा वेटर होने की एक्टिंग कर रहा था कि वो इंसान कम और एक चलता फिरता रोल ज्यादा लग रहा था, वो असल में अपनी आज़ादी से उसकी जिम्मेदारी से भाग रहा था।
तो फिर प्रामाणिकता क्या हुई?
प्रामाणिकता इसका ठीक उल्टा है। प्रामाणिकता का मतलब है अपनी स्वतंत्रता और जिम्मेदारी को हिम्मत के साथ स्वीकार करना, होशपूर्वक अपने मूल्य चुनना, अपने लक्ष्य तय करना और स्व के प्रति ईमानदार रहना, जिसे हम खुद बना रहे हैं, भले ही वो समाज की उम्मीदों से मेलना खाता हो।
ये आसान नहीं लगता।
बिल्कुल नहीं, इसमें हिम्मत चाहिए, दुनिया के दबावों का सामना करने की और अपनी अंदरूनी बेचैनी का सामना करने की भी।
एक और जरूरी विचार था अन्य, दी अदर। मुझे लगता था अस्तित्ववाद सिर्फ मैं के बारे में है।
नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक आम गलतफहमी है। फ्लिन बताते हैं कि दूसरों का होना हमारी खुद की चेतना के लिए बहुत जरूरी है।
वो कैसे?
सार्त्र कहते हैं कि जब कोई दूसरा हमें देखता है, जिसे वो नजर कहते हैं, तो हम अचानक खुद को उनकी दुनिया में एक चीज की तरह महसूस करते हैं।
अच्छा,
उदाहरण के लिए
जैसे?
जैसे मान लीजिए मैं पार्क में अकेला बैठा हूं, अपने ख्यालों में खोया हुआ, और अचानक कोई आके मुझे घूरने लगे।
हाँ,
उस नजर से मुझे अचानक अपनी शारीरिक मौजूदगी का एहसास होता है, जैसे मैं उनके लिए सिर्फ एक वस्तु हूं। ये अनुभव थोड़ा असहज कर सकता है, हमें अपनी आजादी पर खतरा महसूस करा सकता है, शर्मिंदा कर सकता है।
लेकिन इसका फायदा क्या है फिर?
फायदा ये है कि यही नजर हमें आत्म जागरूक भी बनाती है। हम खुद को दूसरों के जरिए ही देखते हैं, समझते हैं। दूसरों के साथ हमारे रिश्तों से ही हम खुद को परिभाषित करते हैं, अपनी सीमाएं और संभावनाएं जानते हैं। तो हमारा वजूद अकेले में नहीं है, वो दूसरों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें प्यार भी है, सहयोग भी है, और हाँ, संघर्ष भी है।
और शायद इसीलिए, जैसा आपने कहा, सार्त्र, कामू, सिमोन द बोवार, ये सब बड़े लेखक और नाटककार भी थे, क्योंकि ये विचार कहानियों में बेहतर आते हैं।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो अनुभव है ना, आज़ादी, चुनाव, अकेलापन, जिम्मेदारी, प्रामाणिकता, इन्हें शायद सूखी फिलॉसफी से ज्यादा असरदार तरीके से कहानियों, किरदारों और स्थितियों के जरिए महसूस कराया जा सकता है।
जैसे सार्त्र का उपन्यास नौजिया।
हाँ, वो चीजों के बेमतलब होने, उनके बस यूं ही होने का अनुभव कराता है। या कामू का द स्ट्रेंजर दिखाता है कि समाज के झूठे हिवाजों के सामने अपनी सच्चाई पर टिके रहने की क्या कीमत हो सकती है। ये दर्शन सिर्फ सोचने का नहीं, जीने का दर्शन है।
फ्लेन एक और जरूरी बात बताते हैं कि अस्तित्ववाद सिर्फ नास्तिकों का नहीं है, इसमें ईश्वर को मानने वाले भी हैं।
जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। आस्तिक अस्तित्ववाद, थियस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म की एक बहुत मजबूत धारा है। इसके सबसे बड़े नाम हैं सोरेन कीयरकेगार्ड।
हाँ, उनका नाम सुना है।
उनके लिए ईश्वर में विश्वास कोई लॉजिक का नतीजा नहीं, बल्कि एक आस्था की छलांग, लीप ऑफ फेथ है। मतलब शक और अनिश्चितता के बावजूद पूरी जिम्मेदारी से ईश्वर के साथ एक निजी रिश्ता चुनना। गैब्रियल मासेल, कार्ल जास्पर्स जैसे विचारक भी इसी धारा में गिने जाते हैं।
और दूसरी तरफ नास्तिक धारा है।
हाँ, नास्तिक अस्तित्ववाद, एथियस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिसके बड़े नाम सार्त्र और कामू हैं। उनका मानना है कि ईश्वर का न होना ही इंसानी स्वतंत्रता को परम बनाता है, बिना किसी शर्त के। कोई बहाना नहीं बचता हमारे पास। कामू के लिए ये स्थिति निरर्थकता, दी एब्सर्ड के एहसास की तरफ ले जाती है। मतलब इंसान की अर्थ खोजने की जो गहरी प्यास है और इस दुनिया की जो ठंडी खामोशी है, उसके बीच का टकराव।
पर दिलचस्प बात यह है कि चाहे ईश्वर को माने या न माने, दोनों ही धाराएं कुछ बुनियादी बातों पर जोर देती हैं।
हाँ बिल्कुल, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, चुनाव की जिम्मेदारी, व्यक्ति के अपने अनुभव का महत्व और एक प्रामाणिक जीवन जीने की चुनौती, ये बातें दोनों में हैं। अपनी भूमिका और लक्ष्य खुद तय करने पर जोर दोनों में है।
तो अगर हम फ्लिन के नज़रिए से अस्तित्ववाद के सार को कुछ मुख्य संदेशों में समेटना चाहें तो वो क्या होंगे? मेरे लिए तो पहला और सबसे अहम संदेश यही लगता है, आप अपनी ज़िंदगी के अकेले मालिक हैं और इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।
हाँ बिल्कुल, हम चुनने के लिए अभिशप्त हैं, जैसा सार्त्र ने कहा। कोई किस्मत, कोई बाहरी ताकत, कोई पहले से तय रोल हमें हमारी जिम्मेदारी से बचा नहीं सकता।
दूसरा मुख्य संदेश वही अस्तित्व सार से पहले आता है, यानी कोई रेडीमेड इंसानी स्वभाव नहीं है। हम जो हैं वो हम अपने चुनावों और कामों से बनते हैं।
जी, ये हर तरह के डिटर्मिनिज्म मतलब नियतिवाद को चुनौती देता है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, सोशल हो या साइकोलॉजिकल। ये कहता है कि हम बदल सकते हैं, हम खुद को बना सकते हैं।
तीसरा, प्रामाणिकता की लड़ाई है ना। जिंदगी का असली नैतिक संघर्ष शायद बाहरी नियमों को मानने या ना मानने का उतना नहीं जितना खुद के प्रति ईमानदार रहने का है।
सही कहा। क्या हम हिम्मत से अपनी स्वतंत्रता और जिम्मेदारी को अपनाते हैं या आत्मवंचना का सहारा लेते हैं, मतलब खुद को धोखा देते हैं, आसान रास्ते चुनते हैं और अपनी आजादी से मुंह मोड़ लेते हैं।
और चौथा, अर्थ का निर्माण न कि खोज। ये कामों वाली बात, मतलब दुनिया हमें तैयार जवाब नहीं देगी।
हाँ,
हमें अर्थ खुद रचना होगा, अपने जुनून से, अपने रिश्तों से, अन्याय के खिलाफ अपने विद्रोह से, अपनी चुनी हुई कमिटमेंट से। अर्थ खोजने की चीज नहीं, बनाने की चीज है।
और ये बातें सिर्फ किताबों की नहीं है, अगर हम अपने आसपास देखें भारत में तो ये संघर्ष हर जगह दिखते हैं, है ना?
बिल्कुल, समाज और परिवार की उम्मीदों के बोझ तले अपनी मर्जी का करियर चुनना या जीवन साथी चुनना, सरकारी नौकरी की सुरक्षा या फिर अपने पैशन के पीछे जाने का जोखिम, हाँ, परंपराओं को निभाना या उन पर सवाल उठाना, ये सब कहीं ना कहीं वही चुनाव है प्रामाणिकता और आत्मवंचना के बीच, स्वतंत्रता और तथ्यात्मकता के बीच। अपना रोल चुपचाप मान लेना है या उसे खुद तय करना है।
बिल्कुल
हाँ, और अस्तित्ववाद हमें कुछ ऐसे यादगार जुमले या सूत्र देता है जो सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे पहला तो वही, एक, अस्तित्व सार से पहले आता है।
हाँ, यानी हम पैदा होते हैं फिर बनते हैं, हमारी कहानी पहले से लिखी नहीं है, हम लिख रहे हैं।
दूसरा, दो, मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है।
ये सुनने में अजीब लगता है पर गहरा है। हम चुनाव करने से बच नहीं सकते, ये आज़ादी एक बोझ भी है क्योंकि सारी जिम्मेदारी हमारी है, और एक ज़बरदस्त मौका भी क्योंकि हम कुछ भी बन सकते हैं। ये हमें हमारी ताकत और जिम्मेदारी दोनों का एहसास कराता है।
तीसरा, तीन, आत्मवंचना यानी बैड फेथ स्वतंत्रता की पीड़ा से बचने के लिए स्वयं से बोला गया झूठ है।
ये आईना दिखाता है कि हम कितनी बार अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए बहाने गढ़ते हैं। हालात ऐसे थे, लोग क्या कहेंगे, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। ये सब अक्सर अपनी आज़ादी के बोझ से बचने के तरीके होते हैं।
और चौथा, फोर, निरर्थकता, द एब्सर्ड, मानवीय अर्थ की आवश्यकता और दुनिया की अनुचित चुप्पी के बीच का टकराव है।
हाँ, ये कामों का नज़रिया, दुनिया हमारी क्यों का जवाब नहीं देती। लेकिन निरर्थकता का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि इस टकराव के बावजूद जीना है, विद्रोह में, स्वतंत्रता में और जुनून में। वो सिस्फस वाली कहानी की तरह।
हाँ, वो पत्थर चढ़ाने वाली।
हाँ, पत्थर को बार बार पहाड़ पर चढ़ाना, ये जानते हुए कि वो फिर लुढ़केगा, लेकिन चढ़ाने के काम में ही अपना अर्थ खोजना।
तो क्या ये भारी भरकम विचार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वाकई काम आ सकते हैं या ये सिर्फ फिलोसफर्स के लिए हैं?
नहीं नहीं, फ्लिन जोर देकर कहते हैं कि ये बहुत प्रैक्टिकल दर्शन है। जैसे निजी जिंदगी में ये हमें अपनी जिंदगी का ओनरशिप लेने को कहता है, अपनी कहानी का हीरो बनने को, ना कि हालात का शिकार। अतीत की गलतियों या दूसरों की राय को अपनी पहचान मत बनने दो, अपने जीवन को एक खुली किताब की तरह देखो जिसके अगले पन्ने तुम्हें लिखने हैं।
और करियर या काम के लिहाज से
ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सिर्फ पैसे या पद या सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, या हमारा काम हमारे अंदर की आवाज, हमारे मूल्यों से भी मेल खाता है। क्या हम अपने ऑफिस में सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे हैं या वहां भी अपने असली स्व को जाहिर कर पा रहे हैं। ये एक प्रामाणिक काम की तलाश की तरफ इशारा है।
और मुश्किलों और संकटों का सामना करने में,
हाँ, इसमें भी मदद कर सकता है। चिंता या डर को अपनी आजादी का एक जरूरी हिस्सा समझना। हालात शायद हमारे कंट्रोल में ना हो, लेकिन उन हालात पर हम रिएक्ट कैसे करते हैं, ये चुनना हमेशा हमारे हाथ में होता है।
विक्टर फ्रैंकल वाली बात।
हाँ बिल्कुल, विक्टर फ्रैंकल ने अपनी किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में यही तो लिखा था। यातना शिविरों के भयानक अनुभव के बाद भी उन्होंने कहा कि सबसे बुरी हालत में भी इंसान अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आज़ादी नहीं खोता।
और नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी के स्तर पर,
हाँ, इसका भी गहरा असर है। अगर हमारा हर चुनाव पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल है, जैसा सार्थक कहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। तब अन्याय के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपनी और सबकी स्वतंत्रता को बचाने का संघर्ष बन जाता है।
और अगर कोई धर्मनिरपेक्ष नजरिए से अर्थ ढूंढ रहा है,
तो अस्तित्ववाद कहता है कि किसी बाहरी शक्ति या किताब से तैयार जवाब का इंतजार मत करो। हम प्यार, दोस्ती, कला, क्रिएटिव काम, समाज सेवा, इन जैसी इंसानी चीजों में अपनी चुनी हुई कमिटमेंट्स में गहरा अर्थ बना सकते हैं, रच सकते हैं।
तो अगर कोई इन विचारों से प्रेरित होकर थोड़ा और प्रामाणिक जीना चाहे तो कैसे शुरू करें?
शायद छोटे छोटे कदम उठाकर।
हाँ बिल्कुल, जैसे अपनी पसंद नापसंद को लेकर ज्यादा ईमानदार होना, भले ही वो दूसरों को पसंद ना आए। नहीं कहना सीखना जब दिल राजी ना हो, उन कामों में ज्यादा वक्त लगाना जो हमें वाकई जिंदा महसूस कराते हैं, बजाय उनके जो सिर्फ करने चाहिए वाली लिस्ट में है।
बिल्कुल सही, ये कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है, ये एक सफर है। अपनी स्वतंत्रता को लगातार याद रखना और उसकी जिम्मेदारी उठाने की कोशिश करते रहना।
तो इस पूरी बातचीत से हम क्या लेकर जा सकते हैं? मेरे लिए सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि अस्तित्ववाद अपनी सारी चुनौतियों के बाद भी आखिर में एक उम्मीद और हिम्मत देने वाला दर्शन है। ये हमें बताता है कि हम कमजोर या बेचारे नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर अपनी जिंदगी को दिशा देने की जबरदस्त ताकत है। हमारी स्वतंत्रता ही हमारी डिग्निटी है।
और मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा असर कर गई वो है अर्थ बनाने का विचार। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन का कोई छिपा हुआ मतलब है जिसे हमें ढूंढना है। अस्तित्ववाद कहता है नहीं, उसे बनाना है, रचना है। और दूसरी बात, ये आत्मवंचना, ये कितनी आसानी से, कितने चुपके से हमारी जिंदगी में घुसाती है।
हाँ।
अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए हम कितने होशियारी से बहाने बना लेते हैं, ये खुद पर लगातार नजर रखने की जरूरत याद दिलाता है।
और थॉमस फ्लिन का शुक्रिया कि उन्होंने इन गहरे, कभी कभी मुश्किल लगने वाले विचारों को इतनी साफ गोई से हम तक पहुंचाया। उम्मीद है ये बातचीत हमारे सुनने वालों को भी अपने जीवन, अपनी भूमिकाओं और अपने लक्ष्यों के बारे में नए सिरे से सोचने का मौका देगी।
जी बिल्कुल।
तो इस ज्ञान गोष्ठी का अंतिम विचार शायद यही है, अगर हम अपनी कहानी के लेखक हैं तो हम कैसी कहानी लिख रहे हैं? क्या हम अपनी कलम का पूरा इस्तेमाल कर रही हैं? मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एक्टर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।